जय माँ। हम लोग सावित्री में सीक्रेट नॉलेज बुक 1 कैंटो 4, और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पेज नंबर 55 55 पर है, हम लोग 55 नंबर। इफ यू शैल सी व्हाट नन येट अंडरस्टैंड्स, गॉड शैल ग्रो अप व्हाइल द वाइज मैन टॉक एंड स्लीप, फॉर मैन शैल नॉट नो द कमिंग टिल इट्स आर, एंड बिलीव शैल बी नॉट टिल दी वर्क इज डन। तो ये प्रश्न उठता है लोगों की, हमको तो नहीं दिखाई देता सुपर माइंड। तो भाई उसका एक बड़ा संक्षिप्त, अति संक्षिप्त उत्तर है कि आंख वाले अंधे हो, सीधी सी बात है। हमको तो अपनी नाक के नीचे क्या है नहीं दिखाई देता है। सुपर माइंड तो बहुत बड़ी बात है, नहीं दिखाई देता है क्योंकि मन की सीमा है। अगर मन की भूमि पर खड़े होकर सुपर माइंड दिखाई देता, उसकी वर्किंग दिखाई देती, तो फिर तो सुपर माइंड एक मन के नीचे की चीज होती। मन तो स्वयं को नहीं जानता, मन अपनी प्राण की वृत्तियों को नहीं जानता, तो मन एक महाअज्ञान और महाअंधकार है। तो पहले इस भूमि से हमको बाहर आना है। तो यहां उस मन की भूमि का वर्णन है मानव मन की। इस समय मन की भूमि तो बहुत ऊपर तक जाती, ओवर माइंड तक, लेकिन मानव मन की जो सीमाएं हैं उससे श्री अरविंद हमको परिचित करा रहे हैं। एक कॉन्शियसनेस दैट नोज नॉट इट्स ओन ट्रूथ। हम लोग ये सब कहते हैं ना, हम सचेत हैं, लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि चेतना क्या है। डिबेट चल रहे हैं इस पर, हम क्यों सचेत हैं, कैसे हैं, क्या अचेत अवस्था में वास्तव में चेतना समाप्त हो जाती है, हम नहीं जानते। हमारे पास प्रश्न है, मन की भूमि पर प्रश्न ही प्रश्न है, लेकिन परफेक्ट उत्तर नहीं है। परफेक्ट उत्तर उससे इवॉल्व करके आते हैं। ए वैग्रेंट हंटर ऑफ मिसलीडिंग डॉन्स। हम तो हर पुस्तक को सत्य मान के उसके पीछे दौड़ जाते हैं, और कई बार इसी स्कॉलरशिप को लोग ज्ञान समझते हैं, और यदि आप एक का सहारा ले लो तो लोग कहते हैं ये तो सीमित है, ये तो आपने अपने आप को एक सेक्ट में ले गए। क्योंकि मन की ये भूमि है जिसमें हम मिसलीडिंग डॉन्स कि भाई यहाँ पर ज्ञान मिल रहा है, वहाँ ज्ञान मिल रहा है, लेकिन जब हम करीब जाते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में ये तो हमारे ज्ञान की वृद्धि हो रही है। बिटवीन द बींग्स डार्क एंड ल्यूमिनस एंड्स, मानव मन कहाँ खड़ा है, एक और ल्यूमिनस एंड है, अतिचेतन है, और दूसरी ओर निश्चेतना, इसके बीच में मानव मन खड़ा है। मूव्स हियर इन ए हाफ लाइट दैट सीम्स द होल। तो ये अर्ध प्रकाश को ही मनुष्य समझता है कि ये पूर्ण प्रकाश है। तो बात हुई है, पहले भी हमने पढ़ा, मैन्स कॉर्पोरियल माइंड इज द ओनली लैम्प। तो मन क्या है, वो एक लैम्प की तरह है जो अंधेरे में आपको प्रकाश दे रहा है। तो आप लैम्प की तो सीमा है ना, तो जब सूर्य निकलेगा तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा जो लैम्प के लाइट में आप नहीं देख सकते हैं। तो यहां पर इस बात से श्री अरविंद हमारा परिचय करा रहे हैं। ये मन की भूमिका, मानव मन की भूमिका वर्णन है। एन इंटररेग्नम इन रियलिटी। अब देखिए, रियलिटी जड़ जगत निश्चेतन से लेकर अतिचेतन तक एक ही रियलिटी है। ये शब्दों का प्रयोग श्री अरविंद कितना परफेक्शन से कर रहे हैं। ये नहीं कि वो रियलिटी है, ये रियलिटी नहीं है, एक ही सत्य है। यहां पर वो विलुप्त है, गुप्त है, वहां पर वो पूरी तरह से अपने स्वयं प्रकाश में दृश्य होता है, प्रकट होता है। तो रियलिटी एक ही है, लेकिन मानव मन उसकी जो सोपान है, सीढ़ियां हैं, उसके बीच में खड़ा है। एन इंटररेग्नम इन रियलिटी कट्स ऑफ द इंटीग्रल थॉट द टोटल पावर। तो मनुष्य की समस्या ये है, जब वो ऊपर की ओर देखता है तो वो भूमि से हट जाता है। आप ऊपर देख के चलने की चेष्टा कीजिए, क्या होगा हम सब जानते हैं। फिर अगर वो नीचे मोबाइल देख के जाता है आप तो भी कट जाता है। यही मानव मन की समस्या है। और सामने देखता है तो ऊपर नीचे को नहीं देख पा रहा है, तो इट कट्स ऑफ द इंटीग्रल ट्रूथ। मन ये मन मनुष्य के जो बॉडी है उसकी भी रचना में यही चीज, अगर वो आगे देखता है तो पीछे नहीं देख पा रहा है, अगर वो दाहिने को देखेगा तो बाएं को नहीं देख पाएगा। तो वही मानव मन जैसा है, उसको रिप्रोड्यूस किया है सिंबॉलिकली, सांकेतिक रूप में प्रकृति ने मनुष्य की रचना की है, शरीर की रचना की है। कट्स ऑफ द इंटीग्रल थॉट द टोटल पावर. इसीलिए जो योगी मन की भूमि से ही भगवान को देखते हैं वो क्या कह देते हैं कि भगवान तो वो है और ये जो है ये या तो शैतान की है या माया है या अनरियल है, क्योंकि वो समग्र सत्य को नहीं देख पाते. गीता में इसका हिंट है समग्रम माम, और विभूति योग में भी इसका वर्णन है, क्योंकि अर्जुन पूछते हैं कि मुझे आप अपने आपकी जो ग्लोरी है आपकी जो महिमा है उसका वर्णन कीजिए संसार में. तो वास्तव में क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण, कहते हैं काल भी मैं हूं, देश भी मैं हूं, मैं बर्थ भी हूं, मैं सारा सब कुछ. तो ये जो संसार में सब कुछ वासुदेवम सर्वमिति, लेकिन आमतौर पे जो योगी हैं वो या तो ये संसार है ये जैसे चल रहा है चलेगा, या उधर भगवान है, क्योंकि मन की भूमि से हम उस सत्य को समग्रता को नहीं पकड़ पाते. इट सर्किल्स और स्टैंड्स इन ए वेग इंटरस्पेस डाउटफुल ऑफ इट्स बिगिनिंग एंड इट्स क्लोज और रन्स अपॉन ए रोड दैट हैज नो एंड. देखिए मन से अगर आप पूछें कि आपकी ओरिजिन क्या है, वो शायद उस दिन भी मैंने ये ऐसे तो एक जोक के रूप में था कि अमिताभ बच्चन ने एक दिन अपने पिता से पूछा छोटे थे कि आपने मुझे पैदा क्यों किया, बहुत कठिनाई हो रही थी उनको जीवन में, अब नहीं पूछेंगे पर उस समय पूछा था, कठिनाइयाँ हो रही थी तो उन्होंने कहा आपने मुझे पैदा क्यों किया, पिता ने कहा कि मैं मनन करके अगले दिन बताऊंगा, वो तो फेमस कवि हैं थे. तो अगले दिन उन्होंने कहा हमने बहुत विचार किया पर अब मेरे को तो यही लगता है कि इसका एक ही जवाब है कि मैंने आपको पैदा किया क्योंकि मेरे पिता ने मुझे पैदा किया और मेरे पिता को उनके पिता ने पैदा किया, तो अंत में मुझे नहीं मालूम कि किसने ये प्रारंभ किया. तो अगर मन की भूमि पर हम पूछें कि हमारा ओरिजिन क्या है तो नहीं पता चलेगा. अब बिग बैंग इज ए वर्ड आप बोलोगे, उसके पहले क्या था इसकी भी बात हो रही है आजकल. अंत क्या, आगे कहां तक जाएगा ये भी नहीं मालूम है. आप कितनी भी डूम्स डे प्रोफेसी कर लेंगे 2000 में Y2K आ रहा है, फिर 2020 में, ये दो तो प्रलय के चले गए प्रोफेसीज. तो मन नहीं जानता, मुख्य रूप से हमारे अज्ञान से हमारा परिचय करा रहे कि ना हमें अपना प्रारंभ पता है ना हमें अपना अंत पता है. और रन्स अपॉन ए रोड दैट हैज नो एंड, बस ये कि हम भागे जा रहे हैं, कोई कहे कि इस रोड पर तो आप जा रहे हैं इसका अंत क्या है भैया ये नहीं मालूम. अब देखिए कितनी बड़ी मूर्खता जैसी चीज है कि हम भागे चले जा रहे हैं बिना लक्ष्य के. जैसे गाड़ी में कोई बैठ जाए और कोई पूछे भैया कहाँ जा रहे हो, कहते हमें नहीं मालूम, गाड़ी जहाँ ले जाएगी हम चले जाएंगे. अधिकांश तो जीवन ऐसा ही है. फार फ्रॉम द ओरिजिनल डस्क द फाइनल फ्लेम. ओरिजिनल डस्क कहाँ है, यहाँ डस्क कौन सा होता है, जहाँ प्रकाश और अंधकार मिलते हैं. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. सूर्य की जो पत्नी है उनका नाम है संध्या और उनके पुत्र हैं शनिदेव बड़ी और यम, ये बड़ी सिंबॉलिक स्टोरी है. तो अब डस्क कौन सा, ओरिजिनल डस्क कौन है, जहां सूर्य डूब रहा है यानी निश्चेतना के अंदर, जहां प्रकाश निश्चेतना में विलीन हो रहा है वो डस्क है. ओरिजिनल डस्क मतलब वहीं से सारे ये जो संध्या वेला ये सब जो मानव जीवन में ये सब वहां से प्रारंभ होती है. फाइनल फ्लेम जहां दिन ही दिन है, सूर्य में चले जाएंगे तो कोई रात नहीं है. तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मानव जीवन है. इन सम ह्यूज वॉइड इन कॉन्शियंस इट लिव्स लाइक ए थॉट परसिस्टिंग इन ए वाइड एम्प्टीनेस. एक विचार जो आपको पता नहीं कहां से आ गया, मक्खी की तरह भिन भिन आ रहा है, जितना आप उसको दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं उतना वो और पास आ रहा है. ये मनुष्य की अवस्था है. एज इफ एन अनइंटेलिजिबल फ्रेज सजेस्टेड ए मिलियन रेंडरिंग्स टू द माइंड इट लेंड्स ए परपट टू ए रैंडम वर्ल्ड. ये मन की अवस्था की बात कर रहे हैं, मानव मन की क्या अवस्था है. अगर अपने जीवन को हम देखें अज्ञान की दृष्टि से तो अनइंटेलिजिबल फ्रेज, इसका मतलब क्या है हमारे जीवन का नहीं मालूम, लेकिन हम मतलब ढूंढ लेते हैं. सजेस्टेड ए मिलियन रेंडरिंग्स, आप ओपिनियन पोल लीजिए जीवन का अर्थ क्या है, तो एक बोलेगा खाओ पियो ऐश करो, दूसरा उसके एक्सट्रीम में जाके बोलेगा भगवान को परमानंद को प्राप्त करो, तीसरा बोलेगा बच्चों का लालन पालन करो, चौथा बोलेगा कर्तव्य के हिसाब से जियो, पांचवा बोलेगा राष्ट्र यही हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि, पांचवा बोलेगा मनुष्यता, छठा बोलेगा जैसे हो वैसे हो मतलब तुम ढूंढ लो, कोई कहेगा अच्छा जॉब. अब देखिए मिलियन रेंडरिंग्स, मालूम किसी को नहीं है। इसीलिए जब समाज गाइड करता है लोगों को तो ये समस्या होती है, क्योंकि इंडिविजुअल समाज से आगे होते हैं, जो इंडिविजुअलिटी फॉर्म हो गई जिनकी। इट लेंड्स ए पर्पट टू ए रैंडम वर्ल्ड, ए कंजेक्चर लीनिंग अपॉन डाउटफुल प्रूफ्स, ए मैसेज मिसअंडरस्टूड, ए थॉट कंफ्यूज्ड, मिसिंग इट्स एम इज ऑल दैट इट कैन स्पीक, और ए फ्रैगमेंट ऑफ द यूनिवर्सल वर्ल्ड। तो फिर ये कैसे कैसे मीनिंग, ए मैसेज मिसअंडरस्टूड, ए थॉट कंफ्यूज्ड। फिर कोई मान लीजिए कहता है कि क्या एम है लाइफ का, कहते हैं बीइंग हैप्पी। ओके, ट्राई टू बी हैप्पी। देखिए इतना चैलेंजिंग काम है। आप सच में अगर केवल इस चीज को पकड़ लेंगे कि मेरा जीवन का लक्ष्य हैप्पीनेस है, तो आधा योग कर लेंगे आप, क्योंकि तब आपको किसी से डिस्टर्ब नहीं करना है। डिस्टर्बेंस क्या कर रहा है, आपके अंदर डिजायर्स कर रही हैं, ईगो कर रहा है, तो ये सारी चीजों से आपको ऊपर उठना है, मुक्ति को प्राप्त करना है अगर आप सिर्फ सतत हैप्पीनेस चाहते हैं। फिर दूसरा क्या है कि भाई भगवान है, लेकिन मिसअंडरस्टूड क्या है, भगवान वहां है, ये संसार तो छलना है, छलावा है। किसी ने हाल में एक प्रश्न किया मेरे से, कहा कि एक वेदांतिन मुझसे कह रहा है कि ये संसार एक छलावा है, तो आपका क्या विचार है। मैंने कहा कि देखो, अगर संसार छलावा है तो वह जो ऐसा सोच रहा है वह भी छल है। अगर संसार छलावा है तो आप संसार का हिस्सा हो, दृष्टा भी छल है। बुद्ध ने तो यही कहा अंत में। अगर आप इसको एक्सट्रीम लॉजिक तक ले जाओगे तो आपने जो फिलॉसफी कही कि ये संसार छल है, तो आप भी छल हो, और छल छल को छल बता रहा है। इसका क्या औचित्य है, फिर कौन बंधा है और कौन मुक्त है, जब कोई है ही नहीं, केवल एम्प्टीनेस है। तो ये सारे ये पर मन इस तरह से मिसअंडरस्टैंड करता है। श्री अरविंद कहते हैं कि हाँ इल्यूजन है, लेकिन इल्यूजन का अर्थ है डिस्टॉर्शन है, एक सत्य का ये डिफॉर्मेशन है, ये संसार नॉन एग्जिस्टेंट छल नहीं है। तो इसलिए वो अपना लक्ष्य खो देता है, क्यों, क्योंकि वो यूनिवर्सल वर्ड। अब देखिए यूनिवर्सल वर्ड कौन सा है जिसमें सारी ध्वनियां आ जाती हैं, ओम, इसमें देखिए तीनों एस्पेक्ट आ जाते, मतलब बाहर जाने वाली गति, ऊ चीजों को अपने अंदर लेने वाली, अंदर ले जा, आओ में सारे सारे आप ले आइए इसके अंदर जितने वर्ड्स हैं। तो ये संसार की तीन गति हैं, बहिर्गति, एक मध्यम जिसमें आप चीजें को अंदर में रखते हो, कॉम्प्रिहेंड करते हो, तीसरा जब आप बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाते हो, तो यूनिवर्सल वर्ड। लेकिन अगर आप इसके किसी एक को पकड़ोगे तो वो संपूर्ण अर्थ नहीं है। तो इसी कारण क्या छोड़ देता है, और ए फ्रैगमेंट ऑफ द यूनिवर्सल वर्ड, इट लीव्स टू जायंट लेटर्स वॉइड ऑफ सेंस। हम कहां बीच में ओ वाली अवस्था में है, हमको अपना ओरिजिन भी नहीं पता, कहां से संसार प्रारंभ हुआ हमको ना उसका अंत पता है, हम बीच की अवस्था में है। तो इसलिए टू जायंट लेटर्स वॉइड ऑफ सेंस वाइल विदाउट सैंक्शन रन्स टर्न्स द मिडिल साइन कैरिंग एन एनिग्मेटिक यूनिवर्स एज इफ ए प्रेजेंट विदाउट फ्यूचर और पास्ट। हमको केवल ये मालूम है, और ऊपर से ऐसी सी फिलॉसफी आती है, लिव इन द प्रेजेंट, सही बात है, हाइएस्ट सेंस में है, लेकिन वो कौन से प्रेजेंट की बात कर रहे हो, वो प्रेजेंट में तो ये भी है कि मेरा मन किया तो मैंने जो चाह कर दिया। तो हाइएस्ट प्रेजेंट, इटर्नल प्रेजेंट, वो एक अलग बात है, वो नहीं जोड़ते हैं क्योंकि वो कठिन है। टू लिव इन द इटर्नल प्रेजेंट इज टू लिव इन कॉन्स्टेंट रिमेंबरेंस ऑफ द डिवाइन, वो कठिन है। तो लिव इन द प्रेजेंट होना चाहिए, लिव इन द प्रेजेंस, दैट वुड मेक सेंस। तो यहां पर है कि हम बस एक क्षण में जी रहे हैं, पहले क्या हुआ, विस्मृति के घेरे में चला गया, आप भूल गए, चीजों को याद भी है तो वो डिस्टॉर्टेड होके, वैसे ही आपके दिमाग, हम सबके दिमाग में पास्ट की एक डिस्टॉर्टेड छवि होती है, हम वो याद रखते हैं जो हम याद रखना चाहते हैं। जैसे बच्चे, हाल में एक बात हुई कि भाई मेरे जीवन में बड़ा बचपन से कष्ट रहा था, मैंने कहा बचपन से कष्ट रहा, माँ ने दूध पिलाया था। देखिए आप बचपन से आप कह रहे हो तो फिर तो ये बात हो गई ना कि आपको शकुंतला की तरह छोड़ दिया गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, माँ हमारी अच्छी थी। देखिए पिता नहीं थे अच्छे, आपके साथ अच्छे नहीं थे, नहीं मेरे साथ तो ठीक थे, मेरी मम्मी के साथ अच्छे नहीं थे, आप देखिए आप कैसे माइंड उसको, आपके माइंड ने रिकॉर्ड नहीं किए हैं चीजें ठीक से, और मेमोरी तो फिर और भी खत्म हो गई, उसमें डिस्टॉर्शन आ गया। फ्यूचर का तो क्या ही कहना, हम लोगों को नहीं मालूम है। इट टर्नड ऑन रिपीटिंग द सेम रिवोल्यूशंस वर्ल्ड टर्नड ऑन इट्स एक्सिस इन इट्स ओन इनेन। दिन बदलता है, किसी ने कहा भी है ना, रोज सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। दिन उठता है, नया दिन है, क्या बदलता है, आप उसी चीज को लेके चलते हो, वही जीवन मैकेनिकल राउंड में चलता है। अंदर से तो बदलना चाहिए ना, कोई नई चीज, ये खेल है। कई बार मैंने खेला भी है लोगों से, एक बार एक बच्चे ने मेरे साथ ही खेल दिया, मैं सबसे पूछता हूँ कि आज के दिन कितनी क्या क्या चीज़ें प्रोग्रेस हुई बच्चों, तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा, अलोक दा टेल मी व्हाट प्रोग्रेस यू मेड टुडे। मैंने कहा 5 में गिनती कर सकता हूँ, पर 3 जगह तो मैं गिरा बुरी तरह धड़ा से 5 जगह प्रोग्रेस हुई, 3 जगह तो मैं बुरी तरह गिरा तो पर मैं कॉन्शियस हुआ कि ये मेरे अंदर भूल है, तो प्रोग्रेस तो हो गई। कहा हाँ ये ठीक है, क्योंकि इफ यू बिकम कॉन्शियस कि भाई आपकी ये भूल थी, तो प्रोग्रेस तो हुई ना आपकी, 3 जगह पे आपकी मध्यम प्रोग्रेस हुई और 5 जगह आपकी बेटर प्रोग्रेस हुई। तो ये लेकिन आम तौर पर हमारी जिंदगी वैसे ही गुजर जाती है। दस इज द मीनिंग ऑफ क्रिएशन वेल्ड फॉर विदाउट कंटेक्स्ट रीड्स द कॉस्मिक पेज। हम संसार को, जीवन को, लोगों को बिना कंटेक्स्ट के देखते हैं। किसी ने एक बार श्री राम के विषय में शेरविंद से पूछा, तो शेरविंद कहते हैं कि तुम लोग राम पर आक्षेप लगा रहे हो, पहले राम जैसे बनो, उस कंटेक्स्ट को देखो। वाल्मीकि के राम ऐसे नहीं है। किसी ने कहा कि बाली को उन्होंने पीछे से मारा इसलिए उनके अंदर ये कायरता का भाव है। कहते हैं राम के ऊपर कायरता का भाव कोई मूर्ख ही लगा सकता है। फिर कहते हैं कि राम का कंटेक्स्ट देखो, उनके चरित्र की टोटैलिटी देखो, उस बैकग्राउंड में तुमको यह देखना है, ना कि अदर वे राउंड। वही बात हो रही थी उसमें विवेकानंद जी की, किसी ने कहा विवेकानंद जी को भी क्रोध आता था, तुम्हें भी क्रोध आता है, तो क्या तुम विवेकानंद जैसे बन गए हो? कंटेक्स्ट देखो बैकग्राउंड से। विवेकानंद रुद्र अवतार हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जहां उनको झूठ दिखा उन्होंने, चंपकलाल जी के भी अंदर ऐसी था, रुद्र अवतार हैं। तो ये थोड़ी है कि तुम्हें भी क्रोध आ गया था, तुम विवेकानंद बन गए, यू बिकम हाफ एज हिम। सो यहां पर कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड किसी भी कृत्य का। और हम जीवन का कंटेक्स्ट, सृष्टि का कंटेक्स्ट हम नहीं जानते, इसीलिए विदाउट इट्स साइंस स्टेयर एट अस लाइक एन अननोन स्क्रिप्ट एज इफ अपियर्ड स्क्रीन्ड बाय ए फॉरेन टंग और कोड अपियर्ड और कोड ऑफ स्प्लेंडर साइंस विदाउट ए की ए पोर्शन ऑफ ए पैराबल सबलाइन। हमें समझ नहीं आता परिस्थितियां अचानक ऐसी क्यों बन जाती हैं, विपरीत अच्छी क्यों बन जाती हैं, कहीं बड़ा खुशी कभी गम, ये क्यों होता है। माता जी से अगर पूछेंगे, माँ कहती है तुम जिस परिस्थिति में स्वयं को पाते हो तुम्हारी वो चेतना की अवस्था के कारण है। अब ये तो कहेंगे ना, माँ आपने दोष हमारे ऊपर ही डाल दिया। दोष नहीं है ये कि आपकी चेतना के अंदर क्या चीज है। अब आप उसको अगर पकड़ लेंगे ना तो आप प्रोग्रेस करेंगे, और अगर नहीं पकड़ेंगे तो आप उसमें घूमते रहेंगे। तो यहाँ ये बात कि बस चीज़ें हमारे सामने आती हैं, चली जाती हैं, बदलती हैं, हम उसके पोर्शन को देखते हैं। जैसे कहानी का एक बीच का होता है ना, कई बार लंबे सीरियल खींचते थे एक समय, तो बहुत वो कौन सा था, हम लोग या ऐसे कुछ था, तो कितना खींचा था सालों। अब आपने बीच में कुछ देख लिया उसमें से, आपको क्या समझ आएगा कि ये सीरियल क्या है, क्यों है। और सबसे इरिटेटिंग होता है जब कोई दूसरे से पूछता है ये क्यों हो रहा है, भाई तुम देखो मैंने जेला है 1 साल इसको एडिक्शन की तरह लोग देखते थे। अब ये आपने एक पोर्शन देखा तो उसमें आपने डिक्लेयर कर दिया कि तो सास बहू का खेला है, सास भी कभी बहू थी। अब आप तो पूरी स्टोरी देखोगे तो अलग ही है। तो यहां पर और कोड ऑफ स्प्लेंडर साइंस विदाउट ए की ए पोर्शन ऑफ ए पैराबल सब्लाइम। यहां ये कह रहे हैं कि लेकिन ये जीवन जो है ना, ये कहानी ये एक सबलाइम पैराबल है, यहां साथ में ये भी बता रहे हैं, ये कहानी अद्भुत कहानी है, एपिक है, सबलाइम है, लेकिन हम लोग केवल घटनाक्रम को देखते हैं, आज ये घटना घटी, कल ये घटना घटी, आज मेरे साथ ये हुआ, कल मेरे साथ वो हुआ, उसके अनुसार हम रिएक्ट करते रहते हैं, ना हम कंटेक्स्ट देखते हैं, ना बैकग्राउंड देखते हैं, ना पास्ट को हम भूल गए, भविष्य को हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए हम जीवन को समझ नहीं पाते हैं। इट वेयर्स टू द पेरिशेबल क्रीचर्स आईज द ग्रैंडियर ऑफ ए यूजलेस मिरेकल। देखिए इसमें व्यंग है सावित्री में कई जगह पर, बड़ा अद्भुत व्यंग है। मनुष्य देख के कहता है, हमारे अनुभव आपका अक्सर सुनेंगे, भाई हमारे अनुभव में तो ऐसा है, वृद्ध लोग कई मतलब हमारे अनुभव के अनुसार, भाई तुम्हारा अनुभव तो एक जीवन का भी नहीं है, अभी कल तुम्हारी ऑलरेडी बुक्ड हो गए हो, अर्थी उठने का आ गया बुलावा, देखो दांत वांत टूट गए हैं, आंख की ज्योति दिम हो गई है, बाल सफ़ेद तुमने रंग आ लिए हैं, लेकिन है तो सफ़ेद, तो आप यमराज को तो डिसीव नहीं कर सकते, लेकिन आपको मेरा अनुभव आ रहा है, किस भूमि पर अनुभव कर रहे हो, किन आंखों से देख रहे हो, पेरिशेबल। तुम्हें तो अपनी आंखों का भरोसा नहीं है कि आज हैं कल रहेंगी, और तुम अपनी आंखों पे, हमने ऐसा देखा है, जब ये कोई कहता है तो पूछना चाहिए कौन सी आंखों से, ये भी बता दो, जन्मजात कैटरेक्ट वाली आंखें। तो यहां पर ये व्यंग है इसमें, देखिए, इट वेयर्स टू द पेरिशेबल क्रीचर साइज द ग्रैंडियर ऑफ ए यूजलेस मिरेकल। ये व्यर्थ है जीवन, ये सब है तारे नक्षत्र, मिरेकल ही है जीवन देखा जाए तो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप ऐसे आ गया है, प्रकट हो गया है। वेस्टिंग इट सेल्फ दैट इट मे लास्ट ए वाइल, ए रिवर दैट कैन नेवर फाइंड इट सी। जीवन एक ऐसी नदी है जो कभी अपने समुद्र को पा नहीं सकती। इट रन्स थ्रू लाइफ एंड डेथ ऑन एन एज ऑफ टाइम। अब कई बार लोग कहते हैं, हमने तो भाई जीवन में यही देखा कि आप भगवान को पा नहीं सकते, आपने प्रयास किया, और अगर नहीं पा सके तो क्या ये सबके ऊपर है कि कोई नहीं पा सकता, और इस जीवन में नहीं पा सके तो क्या आप अगले जीवन में भी नहीं पा पाओगे। तो ये सारे जो हम कंक्लूजन निकालते हैं एक सीमित जीवन के आधार पर, क्योंकि ये माइंड की सीमा है। ए फायर इन द नाइट इज इट्स माइटी एक्शंस ब्लेज। एज ऑफ टाइम है कि हर क्षण देखिए काल बदलता जाता है, आप जब तक उस चीज को पकड़ रहे, प्रेजेंट चला गया, क्या वर्णन है इसका, एज ऑफ टाइम पे नदी बह रही है, आप उसको जैसे ही आपने उसको सेक्शन कर फोटो, इसीलिए फोटो लेना सबसे बेकार की चीज है। आप कहीं भी जा रहे हैं, आपने फोटो ले ली, आपने सेल्फी ले ली, बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं दोनों, उसके बाद झगड़ा हो रहा है कि देखो तुमने ठीक से सेल्फी नहीं ली। अब आपने वो लड़ाई झगड़े की तो फोटो नहीं ली, अब आपने घर में लगा ली, अब आपको क्या याद आएगा। तो यहां पर एज ऑफ टाइम, वो समय गुजर गया, अरे यहां पे रख लो फोटो ठीक है। पर लोग करते हैं ना, कैसे एक दूसरे से मिल करके एकदम हस्बैंड वाइफ एकदम खासकर फोटो दिलवाते हैं, घर में इतना झगड़ा हो रहा है कि मतलब एक साथ वो एक दूसरे को देख नहीं सकते, पर घर में टंगी होती फोटो ज्यादातर, पारिवारिक चित्र, परिवार का चित्र, सारे कुनबे। तो ये मिथ्या, ये मन की यही अवस्था है। इट रन्स थ्रू लाइफ एंड डेथ ऑन एन एज ऑफ टाइम। ए फायर इन द नाइट इज इट्स माइटी एक्शंस ब्लेज। जिसको कहता अरे हमने ये किया वो किया, अंधकार में जीते जीते आपने एक छोटा सा दिया जला लिया, पर लोग ऐसे सोचते हैं कि वो सूर्य समान। लोग बोलते भी बहुत हैं, खासकर सॉरी टू से हमारी हिंदी भाषी क्षेत्र में कई बार परिचय जब देते हैं, हमारे परम श्रद्धे मेरे बारे में जब कहते हैं तो मुझे लगता है भाई प्लीज। श्रद्धे तो भगवान ही है, श्राद्ध ना करवा दो। परम श्रद्धे अब है, ये परंपरा है। अब ये अब वो क्या है वो देखा जाए। माइटी एक्शन, इन्होंने ये कहा वो कहा, महाअंधकार में कुछ दिए जला दिए वो एक अलग चीज है, और सूर्य से आलोक दे दिया वो एक अलग चीज है। तो यहां वही अंतर है। माइटी, ये देखिए ये व्यंग है, इसको आप डिक्शनरी मीनिंग से नहीं पकड़ पाएंगे। ये देखिए व्यंग क्या है, ए फायर इन द नाइट इज इट्स माइटी एक्शंस ब्लेज। ये वर्ड जो माइटी है ये व्यंग है। रावण आया, कंस आया, त्रिलोकाधिपति आए, भाई पता नहीं लंका थी कि नहीं थी आज कुछ कहते हैं ये लंका में थी, कुछ कहते हैं नहीं नहीं वो जावा के पास है ना, उधर थोड़ी दूर वहां पर लंका थी, डूब गई है। लेकिन रावण के समय माइटी एक्शन, त्रिलोकाधिपति राम आए, चुपके से एक वानर ने जला दी तो ये है माइटी एक्शन। तो यहां पर कई जगह सावित्री में ह्यूमर है। दिस इज अवर डीपेस्ट नीड टू ज्वाइन वंस मोर। तो हमें करना क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है, ये जो बीच में हम रह रहे ना, उस दोनों पोल को हमको जोड़ना है, जड़ तत्व और स्पिरिट को, आत्म तत्व को, निश्चेतना और अतिचेतनता को, संसार और भगवान को, ये जोड़ना हमारा काम है। इसको शेरविंद कैसे कह रहे हैं, मनुष्य एक ब्रिज है। दिस आवर डीपेस्ट नीड टू ज्वाइन वंस मोर व्हाट नाउ इज पार्टेड अपोजिट एंड ट्वेन, रिमोट इन सॉवरेन स्फीयर दैट नेवर मीट और फ्रंटिंग लाइक फार पोल्स ऑफ नाइट एंड डे। इनको जोड़ना ये हमारा काम है। माँ कहती है मैन इज लाइक ए ब्रिज, वो एक्स के उस स्थान पर खड़ा है जहां ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ सकता है। इसलिए मनुष्य के अंदर ईश्वर का भी प्रकाश वो देखता है और शैतान भी जागता है, दोनों चीजें एक ही मनुष्य के अंदर। तो ये इन दोनों को जोड़ना, ब्रिज करना, ये मनुष्य का चैलेंज है। सावित्री में एक लाइन है, ए क्रॉस बिटवीन द डेमी गॉड एंड द बीस्ट। तो इन दोनों को जोड़ने की जो प्रोसेस है, व्हाट नाउ इज पार्टेड अपोजिट और ट्वीन, वी मस्ट फिल द इमेंस लैकुना वी हैव मेड। ये लैकुना क्या है, हमारे मन ने, कि ये जो है जब हम देखते हैं धरती की ओर, सत्यवान की यही वो सावित्री से कहते हैं कि पता है सावित्री, वो अपना दिल खोल के कह रहे हैं सावित्री को। तो अब देखिए वो संवाद भी बड़ा अद्भुत है। सत्यवान ये नहीं बता रहे मैंने PhD किया है, मैंने तो ये किया है वो किया, ये सब नहीं बता रहे। कहते मैंने भगवान का भी दर्शन किया है कभी कभी, मैंने अप्सराओं को भी देखा है, मैंने वृक्षों में प्रेजेंस को, मैं ये सब बता रहे, अपनी डिग्री क्वालिफिकेशन पे पैकेट कुछ नहीं बता रहे। फिर कहते लेकिन सावित्री मेरी एक समस्या है, जब मैं संसार की ओर मुड़ता हूँ तो सेल्फ विस्मृत हो जाता है, और जब मैं सेल्फ आत्म तत्व की ओर जाता हूँ तो संसार विस्मृत होता है, ये मैं जोड़ नहीं पाया हूं। और तब कहते हैं बट नाउ दाउ हैस्ट कम द गोल्डन लिंक, वो कहते हैं अब तुम आ गई हो, मुझे ये विश्वास है, भरोसा हो गया है, श्रद्धा हो गई कि तुम इन दोनों को जोड़ दोगी। मैं जोड़ नहीं पाया हूं, मैं जब ईश्वर की ओर तो मैं भूल जाता हूं संसार को, संसार तो मैं ईश्वर को, इन दोनों को जोड़ना। इसीलिए मनुष्य दोनों के बीच में झूलता है, उसको वो चाबी ढूंढनी है। तो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है। मैन डज नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन, इसी चीज को जीसस क्राइस्ट इस तरह से कहते हैं। दिस इज अवर डीपेस्ट नीड टू ज्वाइन वंस मोर व्हाट नाउ इज पार्टेड अपोजिट, पार्टेड ही नहीं है, अपोजिट लगता है, संसार और भगवान तो बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत लगते हैं, एंड ट्वेन, ये हमारी पजल है, सबसे बड़ी पजल, इन दोनों को कैसे जोड़ा जाए। रिमोट इन सॉवरेन स्फीयर्स दैट नेवर मीट और फ्रंटिंग लाइक फार पोल्स ऑफ नाइट एंड डे, वी मस्ट फिल द इमेंस लैकुना वी हैव मेड, रीवेड द क्लोज्ड फाइनाइट्स लोनली कंसोनेंट। फाइनाइट, इन्फिनिट क्या है, फाइनाइट, मां जुड़ गया तो अनंत की ओर प्रवेश कर गया। फाइनाइट क्या है, ह्यूमन माइंड हर चीज को फाइनाइट देखता है, जड़ और चेतन मिल गए तो फाइनाइट इन्फिनिट की दृष्टि आ जाती है। इफ हाइफ़न रीवेड द क्लोज्ड फाइनाइट्स लोनली कॉन्सोनेंट विद द ओपन वॉवल्स ऑफ इन्फिनिटी, ए हाइफ़न मस्ट कनेक्ट मैटर एंड माइंड। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, श्री कृष्ण जब विभूति योग में वर्णन करते हैं तो पता है क्या कहते हैं, अक्षरों में क्या हूं, अक्षर मतलब वो एक, मैं भूल रहा हूं ग्रामर या उसमें, कहते हैं संधि, बड़ा इंटरेस्टिंग है, संधि कहां से कह रहे हैं, कंजॉइंट वर्ड्स में मैं क्या हूं, कंजॉइंट, जो संधि होती है ना, जो जोड़ती है शब्दों को, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये यहां पर उसका है कि यहां पर हाइफ़न मस्ट कनेक्ट मैटर एंड माइंड, हमको किसको जोड़ना है, जड़ तत्व को और माइंड, माइंड यहां उच्चतम, उस पर द नैरो इस्थमस ऑफ द असेंडिंग सोल, उसको लेकर के सोल के पथ से आगे बढ़ के कहां जाना है, वी मस्ट रिन्यू द सीक्रेट बॉन्ड इन थिंग्स. अभी हम गलत ढंग से संसार से जुड़े हैं, तो ये नहीं कि हमको संसार से वैराग्य लेके तोड़ देना है संबंध, हमको नया संबंध का आधार लाना है. कभी भी किसी भी संबंध में कड़वाहट होती है तो क्यों हो रही है, ईगो के आधार पर. तो लोग क्या करते हैं, संबंध तोड़ देते हैं, तोड़ते तोड़ते अंत में सबके साथ तोड़ देते हैं. कभी कभी कहते हैं ना, इसकी किसी से नहीं बनती. लेकिन उपाय क्या है, उपाय है नए रूप से संबंध जोड़ना चैत्य सत्ता के आधार पर. अभी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि बेस्ड ऑन द डिवाइन, डिवाइन के आधार पर. अब आश्रम कंटेक्स्ट में तो ये कई बार ये कहता भी हूं, जब किसी की आपस में अनबन होती है, मैं कहता भैया हो तो एक ही माँ के बच्चे हैं, एक ही कार्य में संलग्न हो, लड़ना है लड़ लो, पर साथ तो रहोगे, परिवार एक ही है. और आश्रम में तो आपको ठुक बजा के ये सिखाया जाता है, डिपार्टमेंट चेंज नहीं कर सकते. अब जिसकी शक्ल आप रोज देख रहे हो, कितना भी बुरा लगे, आपको देखने ही देखना है, आपके पास ऑप्शन बी छोड़ा नहीं है भगवान ने. अगर नहीं मतलब चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके बारे में माने कहा है कि इफ यू चेंज द डिपार्टमेंट इट विल नॉट हेल्प यू, बिकॉज यू हैव टू चेंज योर सेल्फ. शादी में भी यही बात होती है, आप रोज एक दूसरे का मुंह देखोगे. अंत में आप क्या करते हो, कहते हो इससे अच्छा है कि एक दूसरे को समझने ही लगे, लड़ाई करने से क्या फायदा है. अब उससे भी अच्छा है कि एक चैत्य के आधार पर, एक कॉमन एस्पिरेशन में तो जुड़ी सकते हैं ना, हम दोनों की अभीपसा एक है, चलो उसी में जुड़ जाते हैं, हम सबकी अभीपसा एक है. तो वो जो होती है वो आधार हमको बदलना है. वी मस्ट रिन्यू द सीक्रेट बॉन्ड इन थिंग्स, और केवल व्यक्ति नहीं, वस्तुओं के साथ भी, हर चीज के साथ, कि इसमें भी भगवान ड्वेल करते हैं. माँ कहती हैं कि जड़ तत्व के साथ एक इन एक अपेक उपेक्षा का भाव. कई लोग कहते हैं जड़ तत्व है, कैसे भी फेंक दिया रख दिया, कहते हैं ये वास्तव में एक निश्चेतना को दर्शाता है, तुम्हारे अंदर कहीं निश्चेतना की छाप है. टू बी केयरलेस विद मेटीरियल थिंग्स इज अ साइन ऑफ इनकॉन्शियस. यू मस्ट टेक केयर ऑफ देम नॉट बिकॉज यू आर अटैच टू देम, बट बिकॉज दे टू कैरी द डिवाइन इन देम. वो भी बेचारे बुलाते हैं कि भाई देखो मेरी ओर भी ध्यान दो, हम अपने सजने संवरने में लगे हुए हैं. तो यहाँ पर श्री अरविंद उसी की बात कह रहे हैं. तो वो कैसे संभव होगा, अवर हार्ट्स रिकॉल द लॉस्ट डिवाइन आइडिया. डिवाइन आइडिया क्या है, इस रियल आइडिया सुपरामेंटल, इसका आइडिया क्या था इस सृष्टि का, डिवाइन आइडिया एक हम बहुश्याम, हर चीज के अंदर घट घट में भगवान है, और वो घट घट में भगवान स्वयं को प्रकट करना चाहते हैं. यही डिवाइन आइडिया है कि हर चीज के अंदर अपने अपने रूप से भगवान अपनी किसी महिमा को प्रकट कर रहे हैं. तो लॉस्ट डिवाइन आइडिया. तो अगर हम तारे नक्षत्रों को देखें तो विशालता, समुद्र को देखें तो गहराई, सिंह को देखें तो शक्ति, वह शक्ति जो शांत है, हिरण को देखें तो स्विफ्टनेस सब जगह, सांप को देखें तो ट्रांजिशन गति, ये सारी चीजें, हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं डिवाइन आइडिया है. तो आप पूरे भगवान को रिक्रिएट कर सकते हो देख करके. तो यहां पर लॉस्ट डिवाइन आइडिया, रिकंस्टिट्यूट द परफेक्ट वर्ड. प्रारंभ कहां से हुआ था, वर्ड जिसका एक बीच का सिलेबल है और बाकी दोनों मिस हो गए हैं. रिकंस्टिट्यूट द परफेक्ट वर्ड, यूनाइट द अल्फा एंड द ओमेगा इन वन साउंड. अ मा ओम, इसमें तीनों एक हो गया. देन शेल द स्पिरिट एंड नेचर बी एट वन. अब देखिए वास्तव में ओम के अंदर ये सिंबल है. ओम के अंदर सिंबल क्या है, चतुष्पाद ब्रह्म का सिंबल है, आउटर इनर इनमोस्ट, और तीनों को जब जोड़ लिया तो तूरिया. ओम इज अ सिंबल ऑफ दैट. पूरी मुंडक मांडू की उपनिषद इसी पर आधारित है कि ब्रह्म जो है वो चतुष्पाद है. तो एक है जो बिल्कुल बाहरी वेकिंग चेतना का है, जागृत अवस्था, फिर दूसरा है स्वप्न अवस्था, तीसरा है सुसुप्ति अवस्था, चौथी है तूरिया. तूरिया है जो तीनों को धारण किए हुए, दैट इज व्हाट इज अ इज बाहरी चेतना. तो बाहरी चेतना में भी हमको ब्रह्म चेतना को प्रकट करना है, देखना है. स्वप्न अवस्था हमारी जो सपनों का जगत है, यानी वो सपने जो हमारा मन प्राण ख्वाहिशें हैं सब देखती रहती हैं, और उसके परे जो ट्रांसेंडेंट है, यानी तीनों को जोड़ना है हमको, और फिर उनके परे वह परब्रह्म जिसने सबको अपने अंदर धारण किया हुआ है, वहां से हम इसको जोड़ पाएंगे। तो यहाँ ओम शब्द के अंदर वो देखिए कितने सुंदर ढंग से पूरा मुंडक उपनिषद का इतना सुंदर सार अद्भुत ढंग से श्री अरविंद हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप मुंडक उपनिषद पढ़ के वो मज़ा नहीं आता है जितना ये पेज नंबर 56 से 57 उसी सत्य को, लेकिन ऐसे ढंग से प्रकट किया है क्योंकि उसमें तो फैक्चुअल दे दिया है कि भाई ये जागृत अवस्था, ये स्वप्न अवस्था, ये सब जुड़े हुए हैं पूरी ध्वनि में, लेकिन इसका गहरा अर्थ क्या है। लेकिन अगर आप गूगल सर्च करेंगे कि मुंडक उपनिषद, तो आपको केवल उपनिषद के सेक्शन में ले जाएगा। ये डिफरेंस है एआई में और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में। अब यहां पे प्रारंभ करते हैं कि ये दो पोल्स की तो उन्होंने बात कर दी, ये दो पोल्स हैं, दोनों एक ही रियलिटी के दो एस्पेक्ट हैं, एक जो अति चेतन और दूसरा निश्चेतन। अब थोड़ा सा हमारा परिचय करा रहे हैं, वहां से प्रारंभ करते हैं। टू आर द एंड्स ऑफ द मिस्टीरियस प्लान, ये अलग अलग नहीं है, जड़ और अति चेतन यानी स्पिरिट आत्म तत्व, संसार और भगवान, निश्चेतना और अति चेतनता, ये अलग अलग नहीं है, दो छोर हैं, एक ही सत्य के दो छोर हैं। जैसे ब्रिज जो होता है, एक पुल, उसका एक पांव यहां होता है दूसरा पांव वहां, ये दो छोर हैं। तो छोर क्या है? टू आर द एंड्स ऑफ द मिस्टीरियस प्लान। अब वो प्रारंभ करते हैं ऊपर से, जो ऊपरी छोर है, जो अति चेतन अवस्था है, उसके अंदर क्या है पहले वो बताते हैं। एक लंबा वो पैसेज है, हम लोग जहां तक पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे, और उसके बाद वो अंत में हमारा नीचे जो है उसका परिचय लास्ट में देते हैं, क्योंकि उससे हम सब परिचित हैं, पर देते हैं लास्ट में उसका भी परिचय। पर यहां एक लंबा पैसेज चलेगा। टू आर द एंड्स ऑफ द मिस्टीरियस प्लान इन द वाइड साइनलेस ईथर ऑफ द सेल्फ। अब देख कल्पना कीजिए, वाइड साइनलेस ईथर आकाश, उसमें क्या चमचमाते हैं? तारे, दूर से दिखते हैं एक एक तारा मंडल हमारे सूर्य से ऐसे से हैं जो 10,000 गुना प्रकाशमान है, जल रहे हैं, दैदीप्यमान है। तो यहां पर है इन द वाइट साइनलेस ईथर ऑफ द सेल्फ, इन द अनचेंजिंग साइलेंस, वाइट एंड न्यूड, अलूफ, रिस्प्लेंडेंट लाइक गोल्ड डैजलिंग सन्स। ये उन देवाधिदेवों का वर्णन है। वेल्ड बाई द रे नो मॉटल आई कैन बेयर, आप उनको देख नहीं सकते हैं दूर से, तो कई तारे हैं जिनको आप नहीं देख सकते, एक्चुअली नहीं देख सकते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर जिनको हम देख रहे हैं वो तो चले गए हैं। तो ऐसे ऐसे छिपे हुए रहस्य, अज्ञात, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, शक्तियां, देवता, देवत्व, देवियां जो उसको धारण किए हैं। The spirits bear an absolute potencies. अब देखिए यहां देवता और देवी वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, यही तो ब्यूटी है श्री अरविंद सावित्री पढ़ने का, जो ओरिजिनल मजा है। Aloof, resplendent like gold dazzling suns, veiled by the ray no mortal eye can bear. उन पर आप दृष्टि भी नहीं डाल सकते हो, वो प्रकट हो जाएं तो आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। The spirits bear and absolute potencies. बाद में वो लाग लपेट वाले नहीं, वो वाले शिवजी नहीं जो आपने वो गले में सांप सिंबॉलिक शिवजी बना दिए। शिव का डिस्क्रिप्शन पढ़िए श्री अरविंद की पोयम में, क्या वर्णन है। वो वाले कृष्ण जी नहीं जो हमने कृष्ण का वर्णन पढ़िए जो उनकी पोयम कृष्ण क्रिटिक्स उसमें है, ओह नो वॉइड एब्सोल्यूट, उसमें जो वर्णन आता है वो तो ऑल ही लव्स, ऑल ही मूव्स, ऑल आर हिज, ऑल आर ही, ऑल इज ही, वो वर्णन है श्री कृष्ण का। तो उसको तो हम देख भी नहीं पाएंगे उनको। जब श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन जैसा योद्धा कहता है, सर प्लीज आपका वो वाला बेटर था जो टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं, ये वाला मैं बेयर नहीं कर पाऊंगा। एब्सोल्यूट पोटेंसी जिन पर दृष्टि नहीं, और श्री कृष्ण भी कहते हैं तू नहीं देख पाएगा, ये मेरी कृपा से मैं दिखा रहा हूं, दिव्य चक्षु दे रहा हूं, सूक्ष्म आंखों से भी नहीं देख सकते, योगी भी नहीं देख सकते। तभी तो जो श्री अरविंद ने जो श्री कृष्ण को देखा ऐसे, यही अपने आप में बहुत ही अद्भुत घटना है। एक स्वप्न दर्शन के रूप में नहीं देखा, हर अवस्था में उनको सर्वत्र। तो यहां पर उसका वर्णन है, बर्न इन द सॉलिट्यूड ऑफ द थॉट्स ऑफ गॉड. आप उनको देख भी नहीं सकते. अब उनके कुछ तो उनका प्रभाव होता होगा जो पता चले, रैप्चर एंड ए रेडियंस एंड ए हर्ष, परम शांति, परम आनंद, अतिरेक हर्ष और परम प्रकाश. ये वो धारण किए हुए हैं ये देवत्व को. ये वो वाले देवता नहीं जो आजकल वो सीरियल में आते हैं, पुराणों में तो सब कुछ और ही हो गया. ए रैप्चर एंड ए रेडियंस एंड ए हर्ष डिलीवर्ड फ्रॉम द अप्रोच ऑफ वुंडेड हार्ट्स. आप बोलिए अच्छा ऐसा है, हम अपनी पीड़ा का समाधान ढूंढ लें. आप नहीं पहुंच सकते, ये सब आप कॉन्कर कीजिए तब आप जाएंगे. आप तैयार नहीं है उसके लिए. हैं छोटे मोटे देवता हैं बहुत सारे जो आपको ये सब काम कर देंगे. डिलीवर्ड फ्रॉम द अप्रोच ऑफ वुंडेड हार्ट्स, डिनाइड टू द आइडिया दैट लुक्स एट ग्रीफ. अगर आप अभी भी उसमें उलझे हो कि ये क्या किया रे दुनिया वाले, जहां के गम मुझको क्यों दिए, यदि मैं हे दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, वो वहां तक बहुत दूर है. वो भूमि तक पहुंचने के लिए अब टू, इसलिए समता ये सब, तब आप अधिकारी भी होते हो हल्का सा प्रवेश पाने के. रिमोट हमको, हम कहेंगे भाई हमको तो लेकिन ये वाले चाहिए जो हमसे डील करें. वो बाद में आएगा वर्णन कि वो है, उसका भी प्रावधान है. लेकिन उसका प्रावधान क्या है वो बाद में आता है. पहले वो जो ट्रूथ है वो देवता ऐसे नहीं देखते हैं. क्यों? क्योंकि वो तो देखते हैं कि 100 जन्मों की उनके सामने आपकी पूरी लिस्ट है. वो कहते हैं ना आपकी कुंडली है पास में. आप कहोगे हम बहुत अच्छे हैं, देखो फलाने मेरे साथ ऐसा किया है. अगर आप इसे देवता के पास चले गए ना जस्टिस मांगने, न्याय मांगने, शनि देव के पास, न्याय के देवता है कि भाई आप मेरे साथ न्याय कीजिए, क्या हुआ है मेरे साथ, इसने इतना बुरा किया, कहेंगे ठहर जा आपकी पत्री निकालेंगे. अभी बताता हूं कि तेरे अंदर क्या क्या भाव आए हैं, क्या क्या किसके प्रति आए हैं. तो आप बोलोगे प्लीज ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो. क्योंकि वो वैसे एक्ट करते हैं, वो ऐसे नहीं एक्ट करते हैं जैसे हम लोग इमीडिएट रिएक्ट करते हैं. तो यहां पर उसका, उन देवताओं का वर्णन है. रिमोट फ्रॉम द फोर्स दैट क्राइज आउट इन इट्स पेन, इन हिज इनएलियनेबल ब्लिस दे लिव. वो सतत आनंद में रहते हैं और उनकी दृष्टि अचूक होती है. उसको आप किसी भी ढंग से, जब श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्ण को ऐसे मारना है तो उन्होंने वो सब देखा हुआ है. आप जज करते रहिए सही था गलत था. जब श्री राम बालिका पीछे से वध कर रहे हैं उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, आप उनको जज करते रहिए. इन द इनएलियनेबल ब्लिस, वो उस परमानंद में वो रहते हैं वो देवता. इमैक्युलेट इन सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ पावर. सेल्फ नॉलेज उनको ज्ञान है, शक्ति है, और वो अपनी पूरी पवित्रता में. इमैक्युलेट वर्ड है, प्योरिटी नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. इमैक्युलेट उसको कहते हैं जो कभी भी दूषित ही नहीं हुई. प्योरिटी है जो आप रिकवर करते हो, जो गिरी ही नहीं, जिसका पतन ही नहीं हुआ. अक्षितम अच्युतम वो इमैक्युलेट है, जिसके अंदर कभी कोई पाप वृत्ति संभव ही नहीं है. तो उनकी बात कभी हो ही नहीं सकती है गलत. उनकी दृष्टि काम दे रिपोज ऑन द इटर्नल विल. वो आपके हिसाब से नहीं चलते हैं. आप रो रहे हैं बिलख रहे हैं, देखिए होता है ना कई बार लोग बड़े रोते बिलखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको. हाँ लेकिन एक अंतर्यामी है वो करते हैं इंटरवीन, वो बाद में आएगा, इसलिए धैर्य रखिए. लेकिन ये देवता नहीं करते हैं, वो दूसरे ढंग से, वो इटर्नल. अगर उनको अंदर से ये भगवान का संकेत आएगा स्पंदन, देन दे विल इंटरवीन. आपको हो सकता है लगे कि मेरी प्रार्थना के फल स्वरूप, लेकिन वो आपकी प्रार्थना के फलस्वरूप नहीं हुआ है, उनको कहीं और से ये संकेत आया. इटर्नल विल. Only his law they count and him obey. They have no goal to reach, no aim to serve. उनको ये नहीं कि संसार से ये हमको दूर. वो अपने आनंद में हैं और प्रकाश में हैं, और जो ऊपर से प्रेरणा आती है उनके भी ऊपर कौन है? शाश्वत, eternal. तो उस विल यानी दिव्य माँ की प्रेरणा से, ये कई बार हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं या स्क्रिप्चर्स में पढ़ते हैं कि उन देवता को प्रेरणा हुई तो वो वहां पहुंच जाते हैं। वो प्रेरणा किसने दी, कहां से हुई? वो डिवाइन मदर की प्रेरणा। तो उस प्रेरणा के अनुसार ओनली हिज लॉ दे काउंट एंड हिम ओबे, दे हैव नो गोल टू रीच, नो एम टू सर्व। उनका और कोई नहीं है, केवल सरेंडर, उनकी प्रेरणा से कार्य करना। इम्प्लेकेबल इन देयर टाइमलेस प्योरिटी, अब ये आ रहा है प्योरिटी किस सेंस में, एक होती जो प्योरिटी आप रिगेन करते हो दूषित होने के बाद, यहां पर टाइमलेस प्योरिटी, काल की गति में ही जो नहीं उतरी है, टाइमलेस, वो सदैव ही पवित्र हैं, हाईएस्ट सेंस में पवित्र हैं। तो इमैक्युलेट इन देयर टाइमलेस प्योरिटी, इम्प्लेकेबल मतलब जिनको आप दोष दूषित कर ही नहीं सकते हो, इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल इन देयर टाइमलेस प्योरिटी, ऑल बार्टर और ब्राइब ऑफ वर्शिप दे रिफ्यूज। भयानक है आप ये सब जो हम करते थे ना, 5 रुपए से हनुमान जी को प्रसन्न कर लेंगे, कई बार मैं तो बचपन में मुझे लगता था जब देखते थे मंदिर में जाके लोग हनुमान जी को चढ़ावा, मन में आता था हनुमान जी प्रकट हो गए तो पहले तो आपके अंदर जो रावण है ना उसका विनाश करेंगे, क्योंकि देखता था मैं, जानता था इन लोगों को, कहता आप हनुमान जी के सामने क्या मूर्खता कर रहे हो, उनके सामने ऐसे चढ़ावा दे रहे हो, ही विल फर्स्ट टेल यू कि तेरे अंदर भक्ति है, श्रद्धा है, नहीं है, वो तो जानते हैं, अब वो एक्सपीरियंस उनका एक हो गया है कालनेमी के साथ वो देखेंगे कालनेमी क्या मांगने आए हो तुम, और प्रसन्न करके वो घंटा बजा के आ गए। बार्टर और ब्राइब, ये जो उच्चतम देवता हैं, ज्यादातर ये मन्नत वाली जगह पर वो देवता नहीं होते हैं जिनका विग्रह है, ऐसे देवता होते हैं प्राण जगत के शुद्र देवता, उनका यही काम है, मिठाई खिला दो, ये कर दो, मन्नत पूरी कर दो, बच्चे की शादी करानी करा दो, वो गारंटी नहीं लेते हैं कि इसके बाद सब सुखी रहेगा ये उनके हाथ में भी नहीं है, पर करा देंगे, आपको चाहिए कोई वर वो ढूंढ देंगे, उन्हें थोड़ा धन मिल जाएगा, धन मिलने के बाद उसका आपके मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, सफलता मिल जाएगी, वो सफलता आपके जीवन की सबसे बड़ी विफलता होगी, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जीवन में कई बार फेल्योर के द्वार से भगवान का द्वार खुलता है। तो ऑल बार्टर और ब्राइब ऑफ वर्शिप दे रिफ्यूज, कि हम रोज इतने स्त्रोत करते हैं, अरे भाई उनको ऐसे इतना, ये कोई ह्यूमन जज हैं जिनको आप बैकडोर से पैसे दे दोगे, वो आपकी चेतना को देखते हैं। माँ एक जगह कहती है, डू यू थिंक, बड़े उसमें कहती है आवेश में, इफ यू सीट ए रियल गॉड विल ही लाइक ऑल दिस, ही विल सी व्हाट इज इनसाइड यू। आपने मन को तो मैला किया हुआ है, कपड़े उजले पहने व्हाइट, अपने मन आपका मैला है, दूषित है, काला है, आप जा रहे हो भगवान के सामने, ये दिखा दो कि ये काला काला मेरे अंदर है, भगवान कुछ करो इसका, आप जा रहे हो कि मैं बहुत बड़ा एक अच्छा मनुष्य हूँ, पुण्य आत्मा हूँ, साधु हूँ, क्योंकि सब लोगों ने आपको चढ़ाया हुआ है, सारे पॉलिटिशियन करते हैं ना सफ़ेद कपड़ा, पता नहीं क्यों, अब जो हो आप सब दुनिया जानती, कम से कम छिपाओ तो ना, वकील दूसरा लेते हैं रूट, वो तो काला पहन लेते हैं, वो दिखा रहे हैं कि हम तो करें ही शेरविन ने वर्ड यूज किया ना, लायर्स एज दे से इन पंजाब, लॉयर्स को लायर्स, लायर्स हम क्या किसको मूर्ख बना रहे हैं कि हमने वहां जाके इतना दान दे दिया तो भगवान बड़े खुश हो जाएंगे इसको साथ, दिस ऑल नॉनसेंस। तो ये जो देवता है, ये प्राण के देवता हैं, ऐसे शुद्र देवता, यहां उनकी बात नहीं हो रही है, उनका वर्णन आएगा सावित्री में, सबका वर्णन है, वो आएगा लिटिल लाइफ, गॉड हेड्स ऑफ द लिटिल लाइफ, वहां ऐसे देवता है, देवी देवता। यहां जो हैं उच्चतम, वो तो हमारे अज्ञान को दूर करते हैं। अनमूव्ड बाय क्राई ऑफ रिवोल्ट एंड इग्नोरेंट प्रेयर, दे रेकॉन नॉट अवर वर्च्यू एंड अवर सिन। भगवान जी कृष्ण कंस को बैठाई क्यों था गद्दी पर, दे रेकॉन नॉट अवर वर्च्यू एंड अवर सिन। इस पर एक पूरी पोयम है श्री अरविंद की, राक्षस, तो उसमें कहते हैं कि रावण को आने ही क्यों दिया, श्री कृष्ण से सारे ऋषि कहते हैं कि भैया आपने इसका कुछ करिए, बहुत आतंक मचा रहा है। शिव ने कहते धैर्य रखो, जाएगा ये। कब जाएगा? कहते हैं 1000 वर्ष लिया इसने इवॉल्व करने में पशु से असुर, अब 1000 वर्ष तो देने होंगे ना असुर से मनुष्य आने के लिए। अब इवोल्यूशनरी स्टेज में आप समझ सकते हो, क्योंकि तब तैयार नहीं। असुर का तो काम था राक्षस और पशुत्व को कॉन्कर करना, उसमें से कौन निकलेगा? देवता सीधा थोड़ी निकलेगा, तो असुर निकलता है। असुर अब एक समय तक रूल करेगा, सारी पृथ्वी को राक्षसत्व को असुरत्व में ले जाएगा। असुर कौन है? इंटेलेक्चुअल अर्बन नक्सल्स असुर हैं, और जो ग्राउंड पर गोली चला रहे हैं वो राक्षस हैं। दैट इज द डिफरेंस। जो इंटेलेक्चुअली वो बात करते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, देर इज नो गॉड, देर इज ऑल दिस, यू नो एवरीथिंग इज फाइन, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन वो पूरे वही एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, ग्रीड, इसी में वो रथ हैं। तो असुर हैं, डिग्री बड़ी बड़ी है। तो ये जो है वो ये देखते हैं, ये नहीं कि ये अच्छा है बुरा है, ये दृष्टि हमारी है, सीमित दृष्टि। वो सबको चांस मिलता है, असुर को भी चांस मिलता है, कर ले तू अपनी मनमानी। भगवान ये देते हैं, किसी ने माँ से पूछा कि भाई असुर को आप इतना क्यों दे देते हो? कहते ये उसका, अगर उसको समाप्त होना है ना, तो ये सबसे आसान रास्ता है। अब असुर को आप चने के झाड़ पे चढ़ाओगे तो एक दिन गिरेगा तो बुरी तरह टूटेगा। तो भगवान कहते हैं वो फट जाएगा, इम्प्लोड करेगा। तो उनका जो दृष्टि है वो बिल्कुल अलग, ये नहीं अरे यहां खराब आदमी है इसको मार डालो, ये हमारी दृष्टि है। इसको तत्कालिक क्यों नहीं भगवान? भगवान ये तत्कालिक चीज नहीं, वो कोई प्रयोजन से आया है, और जब उसका प्रयोजन समाप्त हो जाएगा, औचित्य समाप्त हो जाएगा, तो चला जाएगा। एडवर्स फोर्सेस के बारे में माँ यही कहती है, When their necessity to make us sincere is over, they will vanish. तो यहां पर वही सारी चीज है। They reckon not our virtue and our sin. They bend not to the voices that implore. They hold no traffic with error and its rain. वो ये नहीं कि वो पार्शियलिटी कर रहे हैं इसके प्रति उसके प्रति, उनका उनकी दृष्टि अलग है, जब उनकी समग्र दृष्टि है। They are guardians of the silence of the truth. क्या अद्भुत पंक्तियां हैं। तब ये उस वहां तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इस राह से गुजरना होता है, और वो ऐसे वो देवाधिदेव हैं जो साइलेंस ऑफ द ट्रूथ के गार्जियंस हैं। अब देखिए चंपक लाल जी को माँ ने क्या कहा था, डोंट स्पीक। क्या? क्योंकि वो प्राइवी थे जो माँ श्री अरविंद के कन्वर्सेशंस होते थे। कहा चंपक लाल अब क्या है, गार्जियंस ऑफ द साइलेंस ऑफ द ट्रूथ। उनको पता था हर व्यक्ति के बारे में इसका क्या है क्या है। क्यों पता था? बाय डिफॉल्ट पता था, ही वाज ऑलवेज प्रेजेंट। जब माँ श्री अरविंद की बात हो रही उसमें अब नेचुरली फैकल्टी भी डेवलप होती है, पर उनको इसलिए क्योंकि तुम उन बातों को अब जान रहे हो जिनको तुम को बताना नहीं है किसी को भी। They are guardians of the silence of the truth. They are keepers of the immutable decree. भगवान ने जो कह दिया वो उसके हिसाब से। किसी ने एक बार नलिदा को कहा, भगवान माँ ने मेरा पक्ष सुना ही नहीं, मुझे कहा चले जाओ, मेरा दोष क्या था? दोष तो उसका था, माताजी को मेरा पक्ष सुनना चाहिए था, इत्यादि इत्यादि। तो नलिनीदा कहते हैं माँ ने कहा है ना, कृपा के रूप में लो, बाद में तुमको पता चलेगा, तुम अभी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो। तो बड़े भारी मन से वो व्यक्ति चला गया कि भाई माँ ने कहा है चले जाओ। वो कंप्लेंट गई थी तो उसको लगा माँ तो न्याय करेंगी, मैं तो सही हूँ। हर मनुष्य अपने आप को सही समझता है, जस्टिफाई करता है, तो मैं तो सही हूँ, और वो बाहरी रूप से सही भी रहा होगा। वो जो भी बात है, माँ ने इस व्यक्ति को कहा जो स्वयं को सही समझ रहा था, यू गो अवे फ्रॉम हियर। वो नलिदा के पास गया, देखिए अनदर एक्शन ऑफ द गार्जियन ऑफ द साइलेंस ऑफ द ट्रूथ। तो नलिदा क्या करते हैं, जो यहां पंक्ति है ना, दे आर कीपर्स ऑफ द इम्यूटेबल डिक्री। माँ ने कह दिया है ना, मैं तुम्हारी पैरवी नहीं करूंगा माँ के पास, इम्यूटेबल डिक्री। सेक्रेटरी ऑफ द आश्रम, उनको लगा सेक्रेटरी ऑफ द आश्रम को बोलूंगा, वो जाके माँ वैसे ना ये आदमी अच्छा है, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं है, वो ना ठीक है। वो कहते हैं माँ ने कहा है तो चले जाओ, यही कृपा है, चला जाता है। 15 वर्ष बाद वो कहता है कि आपकी वो बात आज मुझे पता चल रही है, मेरे जीवन ने बहुत सुंदर टर्न लिया, यदि मैं कंटिन्यू करता तो मैं उन्हीं चीजों में उलझा रहता जो मेरे अंदर से, मैं राइटियस हूं, मैं सेल्फ राइटियस हूं, मैं तो वर्चुअस हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, मेरे अंदर इसी बात का अभिमान था और वो टूटता ही नहीं। जब मैं गया तो मेरे अंदर विनम्रता आई। देखिए सेल्फ राइटियस व्यक्ति को मोड़ना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो तो इसमें जी रहा है कि मैं तो सही हूं, इसलिए न्याय को जो बहुत ज्यादा ढूंढते हैं उनकी समस्या यही होती है, मैं तो सही हूं। तो वहां जब वो जाता है 15 साल बाद, कहता है तब मेरा योग इन रियल सेंस शुरू हुआ और बहुत ही प्रगति करता है, यह रियली योगनिष्ठ होता है। और फिर नलिनीदा को आके धन्यवाद करता है कि आपने मुझे माँ की बात, अब माँ ने क्यों कहा था, वो बाहर से नहीं कहा था, उन्होंने देख लिया था कि इसके लिए क्या उत्तम है। तारादी की भी कहानी ऐसी कुछ है, दे आर कीपर्स ऑफ द इम्यूटेबल डिक्री। जय माँ।